मुस्कुराते हुए इप्सिता के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और वो थोड़ी उदास लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अचानक कोई बात याद आ गई हो। नंदिनी ने इप्सिता की बात सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम अभी भी किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? इप्सिता ने थोड़ा सोचते हुए कहा, नहीं यार, हम परेशान तो नहीं हैं, बट। इतना बोलकर वो फिर से चुप हो गई। नंदिनी इप्सिता के भाव देख रही थी। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बताना क्या सोच रही हो? इप्सिता ने कहा, कुछ नहीं, हम बस यही सोच रहे थे कि शुरू से लेकर अब तक अभिमन्यु ने हमारी कितनी मदद की है और हम कभी भी उनकी किसी चीज़ में मदद नहीं कर पाए हैं। बस यही सोचकर हमें थोड़ा बुरा लगता है और हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम स्वार्थी तो नहीं नज़र आ रहे हैं ना? नंदिनी ने इप्सिता के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम भी ना बिल्कुल पागल हो, ये सब क्यों सोचती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी आगे बहुत बार ऐसा समय भी आएगा, उस वक्त तुम उनकी मदद कर देना तो हिसाब बराबर हो जाएगा। नंदिनी की बात सुनकर इप्सिता थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी। उसने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। अभिमन्यु अपनी कार के पास खड़ा होकर कियारा से बात कर रहा था। कुछ देर बात करने और उसका हालचाल पूछने के बाद कियारा ने कहा, ठीक है भाई साहब, अभी आप जाइए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। अभिमन्यु ने कहा, अच्छा अपना और अदिति का ख्याल रखना। कियारा ने कहा, जी भाई साहब। कियारा ने इतना बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक उसी वक्त कियारा के पीछे से एक आवाज़ आई, किससे बात कर रही थी आप? कियारा ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी उसकी सांसें गले में अटक गईं। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। वहीं अभिमन्यु ने कॉल डिस्कनेक्ट की और वो नंदिनी और इप्सिता की ओर देखने लगा। वे दोनों आपस में चुपके चुपके बात कर रही थीं। अभिमन्यु उन्हें इस तरह बात करते देखकर मुस्कराने लगा। वो आगे जाकर उन दोनों की ओर देखते हुए बोला, क्या बात है नंदिनी, आपकी दोस्त आपको इतने दिनों बाद मिली है तो इसका मतलब है सारी बातें आप उनसे यहीं रास्ते में खड़े होकर कर लेंगी क्या? हमें नहीं लगता इस तरह रास्ते में खड़े होकर बात करना ठीक होगा, हमें बात करने के लिए कहीं और चलना चाहिए। अभिमन्यु की ये बात सुनकर नंदिनी और इप्सिता दोनों उसकी ओर देखने लगीं। तभी नंदिनी ने कहा, हेलो जीजू, कैसे हैं आप? अभिमन्यु ने कहा, हम अच्छे हैं, आप बताइए, आपको देखकर तो लग रहा है आपने अपनी फ्रेंड को काफ़ी मिस किया है ना? नंदिनी ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल जीजू, एक्चुअली क्या है ना, मैं हॉस्टल रूम में कभी भी अकेली नहीं रही और अभी जब मैं वापस आई तब से मुझे ईशू के बिना ही हॉस्टल में रहना पड़ रहा है, तो मुझे ईशू की बहुत याद आ रही थी। थैंक यू सो मच जो आप उसे यहाँ ले आए, थैंक यू सो मच। अभिमन्यु नंदिनी को इतना खुश देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप हमें इतना थैंक यू बोलेंगी तो कैसे काम चलेगा? थैंक यू ना बोलकर आप हमें कोई ऐसी जगह सजेस्ट करिए जो यहाँ पर सबसे अच्छी और शांत हो। नंदिनी ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी उसने उसकी ही बात दोहराते हुए कहा, अच्छी और शांत जगह, ओके चलिए हम आपको एक जगह पर ले चलते हैं, चलिए कार में बैठिए। अभिमन्यु ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा और इप्सिता नंदिनी के साथ पिछली सीट पर बैठ गई। नंदिनी ने ड्राइवर की ओर देखते हुए कहा, भैया मैं आपको रास्ता बताती हूँ, चलिए आगे से राइट लीजिए। जैसे ही इप्सिता ने नंदिनी की ये बात सुनी वो हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोली, नंदिनी क्या हम वहाँ? इप्सिता बोल ही रही थी कि नंदिनी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल सही समझी, तो हम वहीं जा रहे हैं। इप्सिता ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन अभिमन्यु वहाँ कैसे जा सकते हैं? अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता की ये बात सुनी उसने फ्रंट मिरर में इप्सिता की ओर देखते हुए कहा, क्यों क्या हुआ? इप्सिता आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? इप्सिता नंदिनी की तरफ देख ही रही थी। नंदिनी ने बहुत ही बेपरवाही से कहा, अरे जीजू ये पागल है, आप रिलैक्स होकर बैठिए और ट्रस्ट मी आप उस जगह पर बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, और एक बार आपने उस जगह का खाना ट्राई कर लिया ना तो आई एम श्योर जब तक आप यहाँ हैं 2 से 3 बार तो आप उस जगह पर चले ही जाएंगे। अभिमन्यु नंदिनी को इतना कॉन्फिडेंटली बात करते देखकर बोला, अच्छा क्या सच में? तब तो हम जरूर जाना चाहेंगे वहाँ और खाना भी ट्राई करेंगे वहाँ का। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, बस आप चलिए और देखते जाइए। नंदिनी ने जब ये बात बोली तो इप्सिता उसकी ओर देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, क्या कर रही हो नंदिनी तुम? अभिमन्यु को उस जगह पर ले जाना हमें नहीं लगता ठीक होगा। इप्सिता ने ये बात धीमी आवाज़ में बोली और नंदिनी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, तुम चुप करो, बेकार में ही टेंशन लेती हो। वहीं महल में कियारा ने जैसे ही अभिमन्यु से बात करके फ़ोन रखा उसके पीछे से एक आवाज़ आई, किससे बात कर रही थी आप? कियारा उस आवाज़ को सुनते ही पहचान गई कि ये आवाज़ उसके बाबा की है। कियारा उनकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। वो अपने बाबा के इस तरह अचानक सामने आ जाने पर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। कियारा के पिता उसके सामने आकर खड़े हुए और उन्होंने बड़ी सख्ती से पूछा, कियारा क्या आप अभी अभिमन्यु से बात कर रही थी? कियारा ने अपने बाबा का ये सवाल सुनते ही अपने मन में कहा, अभी अगर हमने बाबा को बता दिया कि हम अभिमन्यु भाई से बात कर रहे थे तो वो हमसे हजार सवाल जवाब करेंगे और साथ में ये भी पूछेंगे कि वो कहाँ है और हम उन्हें पूरी बात नहीं बता सकते, तो फिर हम बाबा को क्या जवाब दें? कियारा ये बात सोच ही रही थी कि उसने धीरे से नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, बाबा कैसी बात कर रहे हैं आप? हम भला अभिमन्यु भाई से बात क्यों करेंगे, हम तो अपनी कॉलेज वाली फ्रेंड से बात कर रहे थे। नरेंद्र को कियारा की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। वो उसे घूरते हुए बोला, अच्छा लेकिन हमने तो सुना कि आपने भाई साहब कहा। कियारा ने जैसे ही ये बात सुनी उसकी सांसें गले में अटक गईं और उसने अपने मन में डरते हुए कहा, मतलब बाबा ने हमारी सारी बातें सुन ली क्या? कियारा थोड़ी घबरा गई थी। वो सोच ही रही थी कि कैसे वो उनकी बात का कोई जवाब सोचे जिससे उन्हें शक ना हो और वो बात संभाल पाए। वो अपने मन में बोली, क्या हमें सच में बाबा को पूरी बात बता देनी चाहिए? क्योंकि अगर हमने उनसे झूठ बोला तो कहीं वो हमारा झूठ पकड़ ना लें, और अगर उन्हें पता चला कि हम अभिमन्यु भाई के लिए उनसे झूठ बोल रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएंगे। कियारा ये सारी बातें सोच रही थी कि अभिमन्यु अर्पिता की शादी हो जाने के बाद अगर घर में किसी से सबसे ज्यादा क्लोज था तो वो कियारा ही थी। वो उसे अपनी सारी बातें बताता था। कियारा भी अभिमन्यु को सगे भाई से भी ज्यादा मानती थी, इसीलिए वो अपने बाबा को अभिमन्यु के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके बाबा और उसकी माँ अभिमन्यु से कितना जलते थे और हमेशा राजगद्दी हथियाने के लिए उसके खिलाफ कुछ ना कुछ प्लान बनाते रहते थे। कियारा को इस तरह चुप देखकर उसके बाबा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए पूछा, कियारा हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपको हमारी बात सुनाई नहीं दे रही, बताइए हमें। कियारा ने अपने बाबा की तेज आवाज सुनकर चौंकते हुए कहा, नहीं बाबा कैसी बात कर रहे हैं, हम अपनी फ्रेंड से बात कर रहे थे। नरेंद्र को कियारा की बातों पर यकीन तो नहीं हो रहा था। वो इससे पहले कि वो उससे और कुछ पूछ पाता, वहां कमरे के बाहर से कियारा को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। उनकी आवाज सुनकर कियारा ने मन ही मन राहत की सांस लेते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने कमरे से बाहर की ओर ही चली गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बच गई, अच्छा हुआ माँ ने हमें बुला लिया, वरना बाबा तो आज हमारी अच्छे से क्लास लेने वाले थे।
वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र अभी भी इस फैसले पर नहीं पहुंच पाया था कि कियारा सच बोल रही थी या फिर झूठ। वहीं इप्सिता और नंदिनी अभिमन्यु के साथ कार में बैठी थीं और थोड़ी ही देर बाद कार एक बड़े से ढाबे जैसे रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। इप्सिता और नंदिनी जल्दी से कार से बाहर निकल आईं और नंदिनी ने कहा, ईशु याद है तुझे हम आज कितने दिनों बाद यहाँ आ रहे हैं? नंदिनी की बात सुनकर इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ काफी दिन हो गए, सच में यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अभिमन्यु ने जैसे ही वो ढाबा देखा वो अपनी कार से उतर ही नहीं रहा था। उसने उस जगह को देखकर धीमी आवाज में कहा, नंदिनी हमें इस जगह पर लेकर क्यों आई हो? इप्सिता और नंदिनी कार से उतरकर बाहर खड़ी होकर बातें कर रही थीं। तभी नंदिनी ने नोटिस किया कि अभिमन्यु तो अभी तक कार से उतरा ही नहीं था। क्रमशः